ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचे। प्रधानमंत्री ट्रेन से पोलैंड से कीव पहुंचे। यूक्रेन के राजधानी पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी में बच्चों की स्मृति का सम्मान किया। इससे पहले श्री मोदी ने कीव में गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1992 में यूक्रेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। श्री मोदी और श्री जेलेंस्की आर्थिक से लेकर व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा, औषधि, रक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा यूक्रेन में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है। भारत ने हमेशा युद्ध का कूटनीति और बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। श्री मोदी की ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संघर्ष समाप्त करने में योगदान देगी। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा से यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं और साथ मिलकर वे दुनिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमरीका का मजबूत साझेदार बनना तय है और यह सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा निर्यात के बारे में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे अब 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा, एसओएसए दस्तावेज और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री सिंह ने अपने अमरीकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमरीका और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से भी वह मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमरीका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के रक्षा सहयोग पर एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। आज नई दिल्ली में देश के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति से स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि एक समीक्षा के बाद पाया गया है कि इनसे स्वास्थ्य को खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन 156 दवाओं में निश्चित मात्रा में खुराक संयोजन तर्कहीन है। मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरा होने की संभावना है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार संजय राय को आज कोलकाता की सियालदह अदालत ने 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत दी थी। अमरीका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया है। वे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के स्थान पर चुनाव खिलाफ लड़ेंगी। सुश्री हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन लोगों को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की। आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती और अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनाग ने एक पेड़ मां के नाम के पहल के तहत आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में पौधे लगाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।